God wants us to refresh us and to revive us.
परमेश्वर हमको ताजगी से नया करना चाहता है.
When we come out from the hot summer, when you enter into a air-conditioned room like this, we know we are feel refreshed.
और जब हम बहुत ही गर्मी के बाद एक air-conditioned room में जब हम जाते हैं, हम बहुत ताजगी महसूस करते हैं.
In the same way, God work in our life to revive us and refresh us through His Word.
और इसी प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवनों में हमको ताजगी देने के लिए, हमें नया करने के लिए कार्य करता है.
I remember some years before when I went for a baptism service. I was standing there observing.
और कुछ साल पहले मुझे याद है कि एक बपतिस्मा की सभा के अंदर में वहाँ खड़ा था.
Sometimes God can speak to the very specifically, will not easily forget.
और कई बार बहुत ही वास्तविक और बहुत ही सीधी रीति से परमेश्वर बात करते जो हम कभी भूल नहीं पाते.
Like that, something God spoke to me silently. I was waiting there watching the baptism service. Something God spoke to me to my heart.
और वहाँ पर बपतिस्मा की सभा जो होती हुए परमेश्वर ने गुप्त रीति से मेरे हृदय से बात की.
That is from Joshua chapter 1.
और वो है यहोशुआ पहला अध्याय.
In 7 and 8.
7 और 8 वचन.
So in essence it says like this.
और इस प्रकार वो कहता है.
It reads like this: Only be strong and be very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go.
इतना हो कि तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे न तो दहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा.
So in the same way, next words, almost the same thing is repeated. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do it according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. And then you will have success.
और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा.
The way God spoke to me that day is is like this.
और परमेश्वर ने उस दिन जब मुझसे बात की इस प्रकार.
To ensure that God's plan for my life to be fulfilled in its entirety.
और पूरी जीवन काल में मेरे परमेश्वर के जो मेरे जीवन के लिए योजना है वो पूरी होना है.
और put another way, you really want to see that my life is truly successful.
और इसलिए दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर मेरा जीवन को अगर सही में मैं सफल रीति से देखना चाहता हूँ,
put another way, if I seek my life to really prosperous.
अगर मैं सही में अपने जीवन को संपन्नता में देखना चाहता हूँ,
prosper, I don't really mean them in terms of money.
और संपन्नता इसका मतलब मैं पैसों के बारे में ही केवल बात नहीं कर रहा.
But in everything which God wants us to be blessed and bloomed.
हर ऐसे क्षेत्र के अंदर जहां परमेश्वर हमें आशीषित देने और बढ़ने के लिए चाहता है.
The single most thing I need to do is to learn to love and value God's word.
और इस पहली चीज जो मुझे करना है वो कि परमेश्वर के जो वचन है उसको मूल्य करना और उससे प्रेम करना.
And I should seek to meditate on it.
और उसको मुझे उसके ऊपर मनन करने के लिए मुझे खोजना है.
My thoughts and my heart meditation should seek to be all through the day should be around God's word.
और मेरे हृदय और मेरे मन का जो चिंतन या मनन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के आसपास होना चाहिए.
And with all diligence I should seek to keep the word or obey God's word.
और पूरे यत्न के साथ मुझे परमेश्वर के वचन को आज्ञा पालन करने के लिए मुझे प्रयत्न करना है.
Not in a very legalistic way, but in a very balanced way as God intended.
और बहुत ही विधिवादी रूप में नहीं, लेकिन एक संतुलन रूप में परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है.
Neither turning left nor turning right.
और दाएं नहीं या बाएं भी नहीं.
So I notice it is written twice. Something written in God's twice means a reaffirmation.
और यहाँ पे दो बार इस वचन को लिखा गया है, जिसका मतलब बहुत ही निश्चित रूप से परमेश्वर बात करता है.
Then your way will be life will be successful.
और उसके बाद ऐसा करने से तेरा जीवन सफल होगा.
Then you will be prosperous.
और तब तू संपन्न या प्रभावशाली होगा.
So I was thinking like this. Now we live in age where people neglect God's word.
और आज हम ऐसी पीढ़ी में रह रहे हैं जहाँ लोग परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करते हैं.
No, we all in honesty, we all can, we will admit what all trying to steal our time and attention, our heart. trying to deviate away from God's word.
और हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे समय को, हमारा ध्यान जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए उसको वो भंग करता है.
So many things taking our attention, our time need not be necessarily evil or sinful things.
और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे ध्यान को, हमारे समय को लेती, कई बार वो बुरी चीजें या पापमय चीजें नहीं होती.
Even good things taking our almost entire time and we don't listen from God through his word.
और कई बार अच्छी चीजें भी हमारे सारे समय को ले लेता है, उसके साथ हम परमेश्वर के वचन को जो है वो या उससे नहीं सुन पाते हैं.
And if you are hardened, we can slowly we can reach a stage like a person having lost his appetite.
और हम जब कठोर हो जाते हो, धीरे धीरे ऐसे स्तर पर आ जाते हैं जहां ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसने अपनी भूख खो दी है.
One of the questions, do you have appetite?
और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार प्रश्न वो डॉक्टर पूछते क्या आपको भूख लगती है.
So lack of appetite is a sign of sickness, something wrong inside.
और कई बार भूख नहीं लगना ये एक बीमारी का लक्षण हो जाता है, कुछ गलत है आपके साथ.
And result is we can see a kind of shallowness in our life.
और हम देख सकते हैं कि उसका परिणाम यह है कि खालीपन सा हमारे जीवन में देखना
our देखा life जाता tend है. To be superficial.
और हमारा जीवन जो है वो बनावटी हो जाता है.
There is no depth of character or depth of strength in our life.
और एक चरित्र की गहराई नहीं होती या बल नहीं होता हमारे जीवन में.
And often we struggle in sin.
और हम हमेशा पाप में संघर्ष करते हैं.
We don't find the strength to withstand, resist sinful things.
और हमेशा उस बल को ढूंढने की कोशिश करते ताकि उस पाप का संघर्ष के सामने हम खड़े रह सके.
Often we unknowingly live in the slavery of sin.
और न जानते हुए हम उस पाप के गुलामी में जीवन बिताते हैं.
We find no strength to say or act that word no.
और हम कभी भी उस बल को प्राप्त नहीं कर पाते कि पाप के सामने हम ना कह सके.
And the potential result will be a stressful, unhappy, unfulfilled life.
और इसका परिणाम ये होता है कि हम बहुत ही दबाव से भरा हुआ, बहुत ही आनंद न हो ऐसे जीवन में हम परिवर्तित हो जाते हैं.
I remember something, I was gratefully remembering something which something I gained blessed through the through God's word.
और परमेश्वर के वचन से मुझे याद आता है जिससे मुझे बहुत आशीष मिली थी.
When I was very young, this desire came very strongly in my life. My life should be free from debt.
और जब मैं जवान था, ये जो इच्छा मेरे जीवन के अंदर है कि मेरा जीवन जो है वो किसी भी कर्जे से मुक्त होना चाहिए.
That desire came when I was struggling for money to meet my needs.
और जब मैं मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं जो संघर्ष कर रहा था, तभी ये मेरे अंदर एक इच्छा आई.
Through God's word, that passion and desire and that goal in my life, God gave me that I should seek to live a life without debt.
और एक ध्येय लक्ष्य जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि मेरा जीवन किसी भी कर्जे के बिना होना चाहिए.
Because word of God says that owe no man anything.
और वचन कहता है कि किसी के भी कर्जदार ना बने.
And it is I learned that it's a promise of God's children that you shall lend but you shall not borrow. That is a blessing of God, promise of God.
ये परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की आशीष है जो कहता है कि आप उधार दोगे उधार लोगे नहीं.
So when I was tempted like many others to buy things even immediately after marriage, when married life started with a minimum income, just enough to look after my family along with my parents.
और जब मेरा विवाहित शुरुआत हुआ तो मेरे पास भी बहुत परीक्षण होते थे कि औरों के जैसे मैं कुछ बात चीज़ों को खरीदूं, लेकिन मेरे पास परिवार था, मेरे माता पिता भी थे जिनकी देखभाल करना था.
Everyone used to do buy the fridge or things like that in the house with EMI. People are coming up, but we decided we'll not buy borrow it by we'll buy when by saving and when God has given us enough money.
और हर कोई हमारे आसपास EMI के द्वारा चीजें, फ्रिज है या और चीजें खरीदते थे, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि जब परमेश्वर में पर्याप्त पैसे देगा उसके बाद ही हम इन चीजों को खरीदेंगे.
And I used to get hundreds of calls, banks, do you want personal loans?
और बहुत सारे सैकड़ों कॉल मुझे आते थे बैंक से कि आपको क्या लोन चाहिए, क्या
do you want a credit card?
क्या आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? और एक बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कुरियर से उसको भेजा.
What I did, I took a scissor, cut it into four and threw into the dustbin.
और उस क्रेडिट कार्ड को मैंने पूरी तरह से कातर से काट के मैंने उसको कूड़े में डाल दिया.
I literally did that.
और मैंने सच में ऐसा किया.
I was captive, was strengthened, was challenged by God's promise that you can live a life without debt, without owing to money to others.
और परमेश्वर के वचन से मुझे चुनौती मिली, ये बल मिला कि हम किसी से भी उधार लिए बिना जीवन को जी सकते हैं.
So God over the years, because of God helped into that. When there was desire, there is a way. God will help.
और परमेश्वर ने सच में इन क्षेत्र में मेरी मदद की. जब हमारे पास इच्छा होती है, तब परमेश्वर उसमें रास्ता निकालता है.
Another thing which challenged me is.
और एक चीज जिसने मुझे चुनौती
दिया. Something which God spoke to me personally from. A simple psalm, that is psalm 1.
और एक भजन पहले अध्याय से जो एकदम साधारण भजन, उससे बात की परमेश्वर ने.
So it speaks about people who it speaks about a promise that.
और वहाँ पे एक वायदा है उन लोगों के बारे में. भजन संहिता 1 में बात करता
है. Or a possibility.
और वहाँ पे एक संभावना के बारे में बात करता है.
Speaks in verse 3 that he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season. And its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers.
वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है.
So this is something we all would covet to be in such a life where a tree planted by the river of water always hara bara leaves and it gives fruit in the right time. No. Everything is very predictable.
और हम में से हर एक ऐसी इस जीवन की इच्छा करेगा जो एक रूस के समान बहती नालियों के किनारे हरे भरे पत्ते उसमें हैं.
It's never dry or it always have that source of water and it live a life to its fulfillment.
और कभी भी ये सूखा हुआ नहीं होता. वो नालियों से वो पानी आता है और वो हमेशा आगे बढ़ता है या फलता है.
So who can be like that? We all can be like that.
और कौन ऐसा बन सकता है? हम सब ये जीवन ऐसे बन सकते हैं.
And God wants each one of us to be living such a life.
और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब ये प्रकार इस प्रकार का जीवन जिए.
His promise is for every son and daughter of God's.
और परमेश्वर का वायदा उसके हर एक बेटे और बेटी के लिए है.
But along with a certain condition, one condition is.
लेकिन उसके लिए एक शर्त है.
His delight shall be in the law of the Lord.
और वहाँ परमेश्वर की व्यवस्था से वो उसकी उसमें उसकी प्रसन्नता होनी चाहिए.
And in His law he meditates day and night.
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन वो ध्यान करता रहे.
This is something which I ask myself is. Is there a delight in my heart for the law of God?
और क्या ये प्रश्न मैं अपने आप से कई बार पूछता हूँ कि क्या परमेश्वर की व्यवस्था के लिए मेरे हृदय में एक प्रसन्नता या आनंद है?
Is there the deep desire and a delight, a rejoicing about the word of God in my heart?
और क्या परमेश्वर के वचन के प्रति एक गहरी एक इच्छा आनंदित या प्रसन्नता से है क्या नहीं?
And there again he speaks about meditating day and night.
और वहाँ लिखता है कि दिन रात उस पर ध्यान करते रहना.
In other words, our desire, our minds, thoughts, everything is focused around God's word.
और दूसरे शब्दों के अंदर हमारे मन, हमारे विचार, सब कुछ जो है परमेश्वर के वचन के आसपास ही हमेशा लगे हुए हैं, केंद्रित है.
And something again which challenged me is a verse from Ezra, the book of Ezra, verse chapter 7 and verse 10.
और Ezra 7:10 में ये वचन मुझे प्रोत्साहित किया.
It's written about Ezra who was a young man.
और यहाँ पे Ezra के बारे में, जो एक जवान व्यक्ति, उसके बारे में लिखा गया है.
We read like this: Ezra set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach it. That's what it says. Ezra was a young man. We all can follow Ezra's ways.
और Ezra जो था वो एक जवान व्यक्ति था. उसकी जो उसका जीवन का अनुसरण हम कर सकते हैं.
He set his heart to study the law of God, study the Bible, study the scriptures.
और उसने अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्था को अभ्यास करने में लगाया.
So that is how he started.
और इस प्रकार उसने शुरुआत की.
And the second step is he sought to practice every one of it, everything in what he studied.
और जो दूसरी बात जो उसने की, जो कुछ उसने अभ्यास किया, उसके ऊपर चलने का उसने कार्य किया.
एंड एज अ थर्ड स्टेप ही आल्सो वांटेड टू टीच इट टू अदर्स.
और तीसरा जो जो चीज उसने किया, वो व्यवस्था लोगों को सिखाना चाहता
था. सो वी ऑल कैन स्टडी द वर्ड, सेट अवर हार्ट टू स्टडी गॉड्स वर्ड.
सबसे पहले हम कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास कर सकते हैं.
सीक टू प्रैक्टिस इट.
और उसके अनुसार चल सकते हैं.
एंड व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग वी कैन टीच अदर्स एज वेल.
और जो कुछ हम अपने जीवन के अंदर चलते हैं, वो लोगों को भी हम सिखा सकते हैं.
दैट इज अ वंडरफुल लाइफ. वी ऑल कैन फॉलो दैट Ezra's footsteps.
और ये बहुत ही अद्भुत जीवन है. हम ऐसे Ezra के पदचिन्हों को अनुसरण कर सकते हैं.
यू नो ऑल दैट वी सी विल चेंज.
और हम जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ बदलेगा.
इज लाइक ग्रास, एवरीथिंग विल बर्न.
और ये एक घास के समान है जो एक जल जाएगा एक दिन.
बट द वर्ड ऑफ गॉड विल अबाइड फॉरएवर.
लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहेगा.
कैन वी थिंक गॉड ऑफ गॉड अबाइड्स फॉरएवर.
और सोच के देखिए कि वो हमेशा सर्वदा बना रहेगा.
गॉड्स वर्ड इज इटर्नल.
परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए है.
नॉट ओनली फॉर द फिजिकल रियलम.
लेकिन ये दिखने वाले जो भौतिक चीजें उनके प्रति ही नहीं है.
सो दैट इज द वैल्यू ऑफ चेरिशिंग एंड सीकिंग गॉड्स वर्ड.
और ये परमेश्वर के वचन को प्रेम करने के लिए एक मूल्य है.
आई एनकरेज मेनी टू रीड फर्स्ट चैप्टर 2 ड्यूरिंग द लास्ट वीक.
और पिछले सप्ताह में जैसे आपको बताया गया था कि पहला पत्रस दूसरा अध्याय पढ़ना है.
द रीजन आई डिड इज सम वन वर्ड्स फ्रॉम दैट रियली टच माय हार्ट.
और एक वचन उसमें से मुझे बहुत ही छुआ.
इट रियली ब्लस्ड मी एंड एनकरेज मी.
जिसने मुझे बहुत आशीष दी और प्रोत्साहित किया.
दैट इज फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट फ्यू वन टू वर्सेस फॉर वर्सेस वन एंड टू.
और पहला और दूसरा वचन, पहला पत्रस दूसरा अध्याय एक और दो वचन.
वी रीड लाइक दिस. देयरफॉर लेइंग असाइड ऑल मैलिस ऑल डिसीट हिपोक्रेसी एनवी एंड ऑल इविल स्पीकिंग As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby.
इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह निंदा की दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ.
So he speaks about like a newborn babes desire the milk.
और यहाँ पे लिखा है नए जन्मे हुए बालकों के समान दूध की लालसा करो.
No, I'm sure Brother Sushil is the youngest baby in our church.
और ब्रदर सुशील के पास सबसे छोटा जो कलीसिया के अंदर बच्चा उनका है.
प्रणाली, if you ask them, if they see that their daughter is not drinking milk, they will be really upset. They will be worried.
अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर उनके अगर उनका बेटी जो है दूध नहीं पीती, तो बहुत ही चिंतित हो जाएंगे.
So in the same way, a baby desires milk.
और जैसे नए जन्मे बच्चे जो होते हैं वो उनके अंदर दूध की लालसा होती है.
So I was thinking, we are all believers for many. I am a believer since even in my student days. I am a Christian. I read Bible, meditate with interest since 1975.
और हम देखते कि हम यहाँ से बैठे हुए जो विश्वासी बहुत सालों से, मुझे याद आता है मैं जब 1975 वहाँ से मैं एक मसीही एक विश्वासी हूँ.
So I was saved in my college days.
और जब मैं कॉलेज के दिनों में था तब मेरा नया जन्म हुआ.
When I was 18 years old, one my classmate shared me the gospel.
और जब मैं 18 साल का था कि मेरे क्लास के एक मित्र ने मेरे साथ सुसमाचार बांटा.
That is how I accept Jesus Christ as my Lord and Master.
और उस प्रकार मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में ग्रहण किया.
So what God spoke to me, even though I can speak about decades of being a Christian.
और यहाँ तक कि मैं अपने सदियों पुराने जो यीशु मसीह बनने के अनुभव से के बारे में बात कर सकता हूँ.
If you want to grow now, seek the word of God, pure milk of the word, like a newborn baby.
लेकिन आज अगर यदि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है तो नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा मुझे करना है.
Don't think even subtly, secretly that I have been reading Bible many years.
और ऐसे बिल्कुल भी सटीक रूप से आप न सोचे कि मैं बहुत सालों से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ.
I know the scripture well.
और मैं प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से जानता हूँ.
If I don't know, I can search in Google.
और अगर मैं नहीं भी जानता तो अभी गूगल में सर्च कर सकता हूँ.
But God wants us to seek and desire. Even today, it, you know, this is something which God spoke to me personally.
और व्यक्तिगत रूप से आज परमेश्वर ये चाहता है कि जो मुझसे भी बात किया.
I need to seek God's word like a newborn baby will cry for milk.
और मुझे इस बच्चे के समान जो रोकर उस दूध की लालसा करता है, वैसे परमेश्वर के वचन की लालसा करना है.
And that is the only way to grow spiritually further.
और यही एक तरीका है जिससे आत्मिक रूप से आगे बढ़ा जा सकता है.
Bible also says that we need to build up. It that happened by the nourishment of the word of God.
और बाइबल में ये भी लिखा है कि हमें एक दूसरे को बनाना है, ये परमेश्वर के वचन से जो पोषण हम प्राप्त करते हैं उसके द्वारा होता है.
Something which again helped me very much is one verse from 1 John chapter 2.
पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय.
Verse 14. 1 John chapter 2 verse 14.
14 वचन.
It's especially to this little focused on youngsters, youth.
और ये जवानों के बारे में लिखा गया है.
I have written to your fathers because you know him who has been from the beginning. I have written to you young men because you are strong and the word of God abides in you and you have overcome the evil one.
हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि आदि से तुम उसे जान गए हो. हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और अपने परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है.
So it's written about young men.
जवानों के बारे में यहाँ लिखा है,
ऑफ कोर्स यंग वीमेन,
और जवान जो बहनें उनके बारे में भी है,
एंड वर्ड ऑफ गॉड अफर्म्स दैट यू आर स्ट्रांग,
और वहाँ वचन का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम बलवंत हो,
यू बिकम स्ट्रांग व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन यू,
आप तब बलवंत होते जब परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है,
एंड एस्पिरिट द थिंग एंड यू हैव ओवरकम द ईविल वन,
और यहाँ पे खास अंत में लिखा है कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है,
सो व्हाट वी कैन लर्न इज वी कैन ओवरकम द ईविल वन, वी कैन ओवरकम डेविल, we can overcome devilish things when we are strong in the word of god,
aur jab hum parmeshwar ke vachan mein balwant hote hain tab har burai har dusht har shaitani baaton ke upar jay prapt kar sakte hain,
when we are strong in the word of god we naturally become strong, we will be resist, we will be able to resist devil and his works, we will be able to overcome,
aur jab hum swabhavik rite parmeshwar ke vachan mein balwant honge to shaitan aur uski har chaalon ka hum samna kar payenge.
We can exactly see the same principle in the life of Jesus.
और यही सिद्धांत हम यीशु मसीह के जीवन में देख पाते हैं.
When devil tempted him like anyone else.
जैसे हमारी वो परीक्षा करते हैं वैसे शैतान यीशु मसीह की भी वहाँ परीक्षा करता है.
One of the way in which Jesus overcome the devil is by using the word of God.
और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही यीशु मसीह ने उन सारे परीक्षणों के ऊपर विजय प्राप्त की.
Jesus told the devil directly that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
और यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा.
This happened when the devil tempted him to convert a stone into a bread when at a time when Jesus was hungry.
जब यीशु मसीह भूखा था तब शैतान ने उसको कहा कि इस पत्थर को रोटी बनाकर खाने के लिए कहा, तब ये वचन उसने कहा.
By saying this word, Jesus overcame that temptation of the devil.
और इस वचन को कहने के द्वारा शैतान के उस परीक्षण के ऊपर यीशु मसीह ने विजय पाई.
So I want to encourage all of you dear brothers and sisters.
और अंत में इसे मैं कहना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करती हूँ प्रिय भाई और बहनों.
I was feeling like there is a need for us to come back to the Bible. Come back to the scriptures.
और मुझे एहसास होता है कि एक जरूरत है आज की कि हम आज वापस एक बार वचन की ओर लौटे, वापस वचन की ओर फिरे.
Now, I am very grateful for my dear wife.
और मेरी पत्नी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ.
Who shows that concern about me when I know I spend little extra time on WhatsApp or watching a video or anything.
और जब कभी WhatsApp या और कोई वीडियो जब मैं देखता हूँ.
She expresses that concern.
और उसको वो चिंता वो बताती है, व्यक्त करती है.
That often helps me to come back.
और वो उससे मुझे मदद मिलती है कि मैं वापस लौट कर आऊं.
एंड आई नेवर व्यू एनीथिंग फ्रॉम मीडिया एनीथिंग व्हिच इज नॉट हेल्पफुल. आई डोंट डू एनीथिंग सिनफुल एट ऑल.
और कोई भी पापमय चीजें, ऐसी कोई चीजें नहीं देखता, ऐसी चीजें जिससे कोई फायदा नहीं, ऐसी चीजें मैं नहीं देखता.
आई वैलियंटली रेसिस्ट ऑल द टेम्पटेशंस टू see things which is not helpful, edifying.
और जो कि हम जो चीजें मुझे बढ़ने में या मेरी मदद नहीं करता, उन चीजों को मैं नहीं देखना चाहता.
But I may be spending time in seeing some news articles, some things which are useful info. But it takes away my time, my priority.
और कई बार होता है कि कई बार वो चीज़ें जो अच्छी है, जिससे न्यूज़ है या जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सारी चीज़ों के अंदर मेरा समय जाता है और मेरी जो प्राथमिकता है वो मैं देख पाता हूँ.
So I remember a time when once it was a time in my life I felt like I'm not hearing from God.
और मेरे जीवन में ऐसा एक समय था जहाँ पर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर से कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ.
I felt why God has left, why God is not speaking. And in prayer talk to God in a way, complain, well, Lord, why you are not speaking to me?
और जब मैं ऐसे आवाज नहीं सुन पा रहा परमेश्वर की, मैंने एक शिकायत करने के रूप से कहा, परमेश्वर तू क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा?
I remember the answer is, I want to speak to you, my son, but you are not giving me time, you are not listening, you are not waiting.
जो उत्तर मुझे मिला कि मेरे बेटे मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ लेकिन तेरे पास समय नहीं, तू नहीं सुन पा रहा मुझे.
You're always busy.
तू हमेशा व्यस्त है.
Even you think so called separate special time also, your iPhone call, your attention goes there, WhatsApp message, your attention goes there.
और जब तेरा जो समय मेरे लिए होता है उसके अंदर भी जब WhatsApp में मैसेज आते तब भी तू उसके समय वहां पर ध्यान देता
है. So from that I learned God is wanting to speak to me.
और परमेश्वर, मैंने ये सीखा कि परमेश्वर मुझसे बात करना चाहता है.
And I may be even given time, but even there my mind is distracted.
और जब मैं उसको समय देने की कोशिश करता तहां वहां भी मेरा मन जो है वो यहां वहां घूमता है.
And God is not able to speak to me.
और तब परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर पाता.
Bible encourages that our word of God should dwell in us richly.
परमेश्वर का वचन में प्रोत्साहित करता है कि हमारे अंदर अधिक से अधिक परमेश्वर का वचन बसना चाहिए.
कोलोसियस चैप्टर 3:16
और कुलसुति 3:16 के अंदर लिखा
है, लाइक ए न्यू कार विद अ बैटरी फुल्ली पैक्ड विद द पावर.
जैसे एक नए कार के अंदर एक बैटरी जो होती है पूरी सामर्थ्य और पावर के साथ होती है.
द वर्ड ऑफ गॉड रिचली dwelling in us.
और परमेश्वर का वचन पूरी तरह से अधिकाई से हमारे अंदर बसे.
When we are full of the word of God richly dwelling us, our thoughts and minds, our life will be guided naturally in God's ways.
और जब हमारे अंदर पूरी तरह से परमेश्वर का वचन बसा हुआ होगा तो हमारे मन में हृदय में तब परमेश्वर पूरी स्वाभाविक रीति से परमेश्वर के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होगा.
And we will be able to live a life to its fullest measure.
और तब हम परमेश्वर के मापदंड के अनुसार एक एक संपूर्ण जीवन जी पाएंगे.
One verse I want to read and close. 2 Timothy chapter 3.
दूसरा तिमोथी उसका
15-17
वचन.
From childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through which is in Jesus Christ. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so the man of God may be adequate, equipped for every good work.
और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश समझाने सुधारने धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए.
So Paul is talking to Timothy and telling, reminding that from childhood you are known the sacred scriptures.
Paulus yahan pe Timothy ko yaad dilata hai ki bachpan se pavitra shastra tera jana hua hai.
So it is not a one day matter. It's not when Sunday. It is a lifelong thing.
ये एक दिन की या रविवार की बात नहीं, लेकिन एक जीवन काल की ये बात है.
Something which we can start early now in our childhood and when you are young.
और ये तब शुरुआत हो सकता है जब हम छोटे हैं या बच्चे हैं तब से, और जवान हो तब भी.
And till we die, we should seek to be enriched in God's word.
और जब तक हमारा मृत्यु हो तब तक परमेश्वर के वचन को खोजते रहना है.
And word of God gives us wisdom leading to salvation.
परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और वो उद्धार की ओर हमें लेकर जाता है.
And it says that through that you will be equipped for every good work.
और वहाँ पे लिखा है, इन सारी बातों के द्वारा तुम हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाओगे.
I mentioned about an example of systematic investment plan.
और जैसे मैंने बताया कि उदाहरण के एक systematic investment plan जो होता है.
When you talk about many, generally we are all interested.
और इसके बारे में जब बात करते हैं सबको एक रुचि आने लगती है.
But through that God spoke to me in the same way, when you are interested to save money little little. And when we need something, we have enough money.
और जैसे इस प्लान को हम देते छोटा-छोटा पैसा हम उसमें जमा करते, जब हमको पैसे की जरूरत है तब हम उसमें पैसे ले पाते हैं.
People who don't have the habit of saying, spend whatever they like, and when they need to borrow from others.
और जब जिनके पास वो जमा करने की वो आदत नहीं होती वैसे ही खर्च कर देते हैं, और जब उनको जरूरत खास पड़ती है तब वो औरों से कर्ज लेते हैं.
The same with scripture, we regularly systematically read, meditate, seek to live, that cumulatively it become like a big investment in our life.
और ये धीरे-धीरे रीति से हम निरंतर प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को धीरे-धीरे करते बढ़ सकते, और जैसे बढ़ते-बढ़ते ये एक बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन में हो जाएगा.
That will work as a great richness and resources for our life.
और ये बहुत बड़े एक हमारे जीवन के लिए एक स्रोत के समान बन जाएगा.
May God help each one of us.
परमेश्वर हम सबों की सहायता करे.
To come back to the Bible.
ताकि हम सब परमेश्वर के वचन के पास बाइबल की ओर आप वापस लौट सके.
That was something which is like a slogan was coming to me. Come back to the Bible.
और एक स्लोगन के जैसा मेरे पास आ रहा था कि बाइबल की ओर वापस लौटे.
May God bless us.
परमेश्वर हमको आशीष दे.
So, I got saved when I was in my junior college.
और जब मैं जूनियर कॉलेज में थी तभी मेरा उद्धार हुआ.
It was like one of my friend's sister was in Christ.
और मेरा एक मित्र की एक दोस्त जो थी वो प्रभु यीशु मसीह में थी.
So she called us for a prayer meeting.
और उसने प्रार्थना का निमंत्रण दिया.
We just went there since all my friends thought that we'll go there. I just went there for doing time pass.
और मैं ऐसे ही time pass करने के लिए वहाँ पे गया था.
So when she started praying.
और जब उसने प्रार्थना करना शुरुआत किया.
I just closed my like eyes and I was not thinking about anything. I was just closing my eyes.
और मैं कुछ नहीं सोच रही थी, सिर्फ मेरे आँखों को मैंने बंद कर लिया था.
I really don't know what happened at that time. I started weeping.
और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, उस समय मैं फिर रोने लग गई।
आई कुड सी द कैलवरी क्रॉस इन फ्रंट ऑफ माई आईज।
और मैं उस समय उस कैलवरी क्रूस को मैंने देखा मेरे सामने।
And all the things that I did, like in my past, it just flashed.
और जो कार्यों मैंने मेरे पहले जीवन में किया था, वो सब मेरे सामने आ गया।
Like my whole body turned cold.
और मेरा पूरा जो बदन जो था ठंडा गिर गया।
And I could really feel the presence of Jesus.
और मैंने प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति मैंने महसूस किया।
If I look at my life before that,
और जब मैं अपने जीवन को उससे पहले जब मैं देखती हूँ,
I was very rebellious.
और मैं बहुत ही एकदम rebellious रहती थी।
I was proud because I studied well. All my friends used to tell me like you are scholar and all, so that made me very proud.
और मेरे अंदर वो घमंड था क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी और लोग मुझे scholar कहते थे, वो घमंड मेरे अंदर था।
I never obeyed my mama. I used to always back answer her.
और मैं अपने माँ का कभी आज्ञा पालन नहीं किया, हमेशा उसके विपरीत शब्द को मैं बोलती रहती थी।
Since my dad was like very strict, I pretended to obey him.
और मेरा जो पिताजी जो था थोड़ा स्ट्रिक्ट होने के कारण उसका मैं आज्ञा पालन करने के जैसे मैं डोंग करती थी।
But when like Jesus came into my life,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया,
my parents really saw the difference in me.
और मेरे माता पिता ने वो बदलाव मेरे अंदर देखा।
My mama like once cried to me saying, I didn't know that where you would end because I had a different lifestyle before that.
और मेरे माँ एक बार रो पड़ी क्योंकि मुझे पता नहीं तुम्हारा अंत कैसा होगा क्योंकि मेरा जीवन उस तरीके से था पहले।
So I had one neighbor auntie beside me. She was a godly woman.
और एक मेरे बगल में एक पड़ोसी आंटी थी और जो जो परमेश्वरी भाई की एक भक्तिमान एक आंटी थी।
Whenever she used to tell me read Bible, I used to tell her why should I read it? What am I going to gain from it?
और जब भी वो कहती थी कि बाइबल पढ़ने के लिए, तो तभी मैं उससे यही प्रश्न करती थी क्यों मुझे पढ़ना है।
So when I was like into Christ, she told me this that Regina, when I told you that you should read the Bible, this was the answer you gave me back. I prayed for you and I'm happy now that you are into Christ.
और ये बात वो आंटी ने बताया कि जब पहले मैंने जब आपको बोला था कि बाइबल पढ़ने के लिए, तुमने ये उत्तर दिया कि मैं क्यों पढूं, आज मेरे अंदर वो खुशी महसूस हो रही है कि आज तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हो, तो उसमें मुझे बहुत आनंद महसूस होता है।
My life like really changed after that.
और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत एक बड़ा बदलाव हुआ।
So once that auntie told me that when you start telling about Jesus to everyone, when you go to heaven, you'll get a crown where there'll be a gems for every soul that you bring to God.
और जब तुम और आंटी ने ऐसे बताया, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब दूसरों को बताओगे, जब तुम स्वर्ग जाओगे, तुमको एक-एक मोती आपको मिलेगा।
So that really motivated me to tell my friends about Jesus.
और ये मुझे बहुत ही एक उत्साहित महसूस किया कि जाके मैं अपने मित्रों को ये बात को बताऊं।
So like after that in my college we had a group. We used to pray together. I used to share God's word.
और उसके बाद कॉलेज में ग्रुप के अंदर था जहाँ पे हम लोग इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे और वचन बांटते थे।
But like for few years I had a good life in Christ.
और थोड़े समय तक एक प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा जीवन था मेरे अंदर।
But when all my friends got departed into different thing, I had no fellowship with God then.
और जब मेरे दोस्त बिछड़ गए थे, उसके बाद मेरे अंदर वो सहभागिता नहीं था।
I like had this guilty feeling whenever I sin.
और जब भी मैं पाप करती थी, तो मेरे अंदर वो पश्चाताप हुआ करता था।
But I never wanted to go back to God.
और मैं वापस ऐसा कभी मेरे अंदर सोच नहीं था कि वापस परमेश्वर के पास जाऊं।
So that is when like my friend once like told me to watch one video of Zach Poonen uncle.
और तभी जाकर के एक मेरे एक मित्र थी जो बताया कि Zach Poonen का वीडियो देखने के लिए।
That the word the way he spoke the like the word he shared really like stuck me.
और जो वचन भाई ने उस वीडियो में बांटा था, वो मेरा हृदय को छू लिया।
By that time I got shifted to like Khamote from Matunga.
और फिर मेरा शिफ्टिंग हो गया माटुंगा से खामोटे, हमारा शिफ्टिंग हो गया।
I had no fellowship then.
तभी कोई सहभागिता नहीं था।
This is when the same girl who like encouraged me to come into Christ told me about the church here.
और वो वही दो मित्र थी मेरी जिसने मेरे को मुझे निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने वापस कलिशा में मुझे निमंत्रण दिया आने के लिए।
So like after coming here, I could see myself growing in Christ.
और उसके बाद आने के बाद मैंने देखा कि मेरे अंदर मैं वापस प्रभु यीशु मसीह में बढ़ने लगी.
Like though I'm not perfect now.
और अभी मैं उतना सिद्ध नहीं हूँ.
But I could see God working in me. Whenever I read the word, God speaks to me.
लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर कार्य कर रहा है और परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे
हैं. So I thank God for all the for His goodness and for His kindness.
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सब उसकी भलाई के लिए और उसके अनुग्रह के लिए.
For whatever I am now, it's because of His grace.
और जो भी मैं आज हूँ उसका अनुग्रह के कारण मैं यहाँ पे हूँ.
I want to thank God for this day He has given me.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो दिन परमेश्वर ने मुझे दिया है.
It's finally here after a long wait.
और बहुत दिनों के बाद.
After a long wait.
बहुत दिनों के बाद रुकने के बाद मुझे दिन मिला है.
So uncle said that you have to share your testimony.
और जैसे अंकल ने बताया कि आपको गवाही की देना है.
Then I was thinking that people who are saved, the brothers and sisters who converted, they really have a good testimony to give, like something you can just gasp on.
और जो इनका उद्धार हुआ है उनके अंदर सचमुच में वो एक एक ऐसा गवाही है जो वो देते हैं जो जिसके अंदर हमारा ध्यान जाता है.
But then I was born in a Christian family, raised in a Christian family.
मेरा जो जन्म जो है एक मसीहा एक परिवार के अंदर ही हुआ है.
So I don't have a big testimony or anything like that.
ऐसा एक बहुत बड़ा गवाही मेरे पास नहीं है.
So since childhood we've been taught like Jesus loves you, Jesus cares for you, He will give you anything you want if you ask Him and believe.
और बचपन से हमें सिखाया गया था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और वो तुम्हारा ख्याल रखता है. जो भी आपको चाहिए आप उससे मांग सकते हो.
But somewhere down the line when you grow up you become selfish.
और जहाँ जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम कहीं ना कहीं हम सेल्फिश हो जाते स्वार्थी हो जाते हैं.
You pray only to God when you need something.
और हम प्रार्थना तब करते हैं जब मुझे जब कुछ चाहिए होता है.
You love Him more when you get it.
और तभी प्रेम करते हैं जब हमें मिलता है.
So adulthood is more like a selfish thing, you know, selfish relationship with God.
और आगे देखें एक एक स्वार्थी एक उपदेश एक उत्पन्न होता है परमेश्वर के सम्मुख में साथ.
But then when you read God's word, then you understand that you come to know what you've done was wrong and everything what God did was He paid a big price for it.
और जब हम उस चीज़ को हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने क्या कार्य किया है और क्या मोल उसने चुकाया है और जब उसके वचन को हम पढ़ते हैं वो समझते हैं.
So I don't have a testimony to give.
मेरे पास वो गवाही नहीं है बोलने के लिए.
But I can testify what God has done in my life.
लेकिन मैं ये गवाही दे सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किया है.
He's been truly faithful and loving and His goodness is just amazing.
और वो एकदम एक विश्वास योग्य परमेश्वर है जो एकदम प्रेम करने वाला परमेश्वर है. उसका भलाई जो है बहुत बहुत बड़ा है और उसने मुझसे प्रेम किया है.
So with that characteristics what He has done for me understanding I understanding it follow Him.
और ये जो चरित्र जो परमेश्वर का जो गुण है इस चीज़ को मैं समझ करके मैं उसके पीछे होने के लिए तैयार हूँ.
The one thing which I already always knew that I had to be baptized. I had to take baptism.
और एक चीज़ मैं मुझे जान मैंने जाना कि मुझे बपतिस्मा लेना है.
But if you would ask me previously, Rachel, you're taking baptism or not?
और अगर मुझे आप पूछेंगे कि आप बपतिस्मा लेने वाले हो या नहीं?
I always thought that for taking baptism, you have to be like really perfect or something.
और मुझे मैं यही सोचती थी कि मुझे एकदम सिद्ध रहना है बपतिस्मा लेने से पहले एकदम सिद्ध होना है.
Because in church, like you have really good examples and you can look up to them.
और क्योंकि कलीसिया में बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिसके ओर हम लोग देख सकते हैं.
So I always thought that okay, when you are perfect, then only you will go and baptize.
और मैं यही सोच रही थी कि मैं जब सिद्ध बनूंगी तभी जाके मैं बपतिस्मा लूंगी.
But then over the time I realized that Jesus came for the sinners and I am a sinner.
और मैंने फिर ये मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह जो है पापियों के लिए आया और मैं एक पापी हूँ.
And I will get baptized because He has come for me and that is His will for me to do.
और मैं इसलिए बपतिस्मा लूंगी क्योंकि वो मेरे लिए आया और वो यही उसका इच्छा है.
Now my next challenge was that when should I take baptism?
और मेरे लिए एक दूसरा चुनौती था कि कब मैं बपतिस्मा लूँ.
Because I was sure I will take it, but I was unsure about my determination.
और मैं निर्णय किया था कि बपतिस्मा लेने के, लेकिन वो पूरी तरीके से मैं उसके ऊपर मैंने निर्णय नहीं किया था.
So I prayed for a couple of months saying that Father, when I have the determination and persistency about my decision, only then I will take it.
और मैं ये प्रार्थना किया प्रभु मेरे अंदर पूरी तरीके से जब मैं तैयार होती हूँ उसके लिए मैंने प्रार्थना किया.
And he did. He changed my mind, and he's made it more persistence.
और फिर परमेश्वर ने मेरा उस मन को बदला और मुझे एकदम मजबूती से खड़ा किया.
And there's a verse that always blesses and challenges me.
और एक वचन जो है हमेशा आशीष देता है और मुझे चुनौती देता है.
Philippians 3:12.
और फिलिपियों का 3:12.
Paul says that not that I've already attained or I am already perfected, but I press on.
और वहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ लेकिन मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जाता हूँ उसके.
That will be a verse for me that I am not perfect, but I will press on to perfection.
और ये मेरे लिए एक वचन है कि मैं सिद्ध नहीं हूँ लेकिन उसके ओर मैं अपने आप को दबा करके मैं बढ़ती हूँ.
So I really thank God that He's given me that decision, the firm decision to keep about baptism.
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो निर्णय लेने में सहायता किया है.
And I would really like to thank the elders, the church, and family for your love and support.
और मैं कलिशा को और कलिशाओं के प्रचिनों को धन्यवाद देती हूँ.
आमीन.
आई रियली थैंक गॉड फॉर द वर्ड व्हाट आई हर्ड दिस मॉर्निंग.
आज सुबह जो वचन मैंने सुना उसके लिए परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ.
समथिंग वेयर आई पुट माई सेल्फ देयर.
और एक जगह है जहाँ मैं अपने आप को खुद को वहाँ देखता हूँ.
एंड रियली आई रिमेंबर माई पास्ट एंड वेयर आई एम स्टिल प्रेसिंग ऑन एंड आई एम वर्किंग.
और मैं अपने भूतकाल को अतीत को देखता हूँ, आज कहाँ वो देखता हूँ और आगे की ओर बढ़ते चले जाता हूँ.
As both the sisters said that no, we are all not perfect.
और जैसे दोनों बहनों ने यहाँ पर बताया कि हम लोग सिद्ध नहीं हैं.
And they have made their mind to work towards perfection.
और लेकिन उन्होंने अपने मन को बनाया है कि वो सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे.
I would encourage them ahead.
लेकिन मैं उनको आगे प्रोत्साहित करना चाहता हूँ.
That I am also not perfect.
कि मैं भी सिद्ध नहीं हूँ.
I'm working out from and still I'm working over it.
और उसके ऊपर आज भी मैं कार्य कर रहा हूँ.
As brother said that you know Psalms chapter 1.
जैसे भाई ने बताया कि भजन संहिता 1 अध्याय से.
You know the tree it talks about a tree which is fruitful.
और एक ऐसे पेड़ के बारे में जो फलता है.
A tree which is you know perfect.
और ऐसा एक पेड़ जो बहुत ही सिद्ध है.
And a tree which you know has got all that is required.
और एक ऐसा पेड़ जिसकी हर जरूरत जो उसको चाहिए उसके पास वो है.
I was you know just thinking that in my spirit.
मेरे अपनी आत्मक में इस प्रकार सोच रहा था.
Where I am planted and what I am.
और जहां जहां कहां मैं बोया गया था और आज मैं कहां हूं.
And how do I look? Do I do that green thing or that you know as it is described you know in that Psalms chapter 1 is am I like that?
और जो भजन संहिता 1 अध्याय में जो हरा भरा जो उस पेड़ का वर्णन किया है कि आज मेरा जीवन उस प्रकार है.
Is that you know I'm bearing that fruit or am I you know that birds you know singing sitting over birds sitting and singing.
और क्या उस पेड़ के समान मैं हरा भरा हूँ या जो पक्षी हैं जो वहाँ पर आते हैं और गीत गाते हैं बैठते हैं.
And really is my life like that?
क्या आज मेरा जीवन उस प्रकार है?
Because I only see that you know I'm still working out in my spiritual life.
और जब मैं देखता हूँ मैं अपने आत्मिक जीवन में वो कार्य हो रहा है.
As remembered also you know about you know the life what we live in depth.
और जैसे हमने सुना उस जीवन के बारे में कि उस कर्जे में जीने के बारे में.
Which was really a miserable for me when I lived and where I remained in that sort of atmosphere.
और इस एक क्षेत्र के अंदर में कई बार मैं मेरे पिछले जीवन के अंदर रहा.
I really failed in many areas of my life which I really confess you know.
और मेरे जीवन के कई सारे क्षेत्रों के अंदर मैं असफल रहा हूं जिसको आज मैं मानता हूं.
Where I made lots of wrong decisions in managing my finances.
और मेरे जो आर्थिक जो पैसे को मैनेज करने के बारे में कई सारे मैंने गलत निर्णय को किया.
And that mistakes which I did that time and still I regret over it and I'm still working on that area and till today I'm working on that particular thing.
और उन गलत निर्णयों को जो मैंने भूतकाल में लिया उसके ऊपर आज भी मैं पछताता हूं लेकिन आज उन निर्णयों के ऊपर मैं कार्य कर रहा हूं.
Because if I had really got this words you know early earlier, I think so. It would have been better for me, which you know, which I got it later on.
और मैं सोचता हूँ कि अगर ये आज के वचन जो अगर मुझे पहले मिले होते तो चीजें बहुत ही अच्छी होती.
Because it would have helped me in taking wrong decisions in my life.
और वो मुझे सहायता करता था कि मैं अपने जीवन के अंदर गलत निर्णय को ना लेता.
There was lots of temptations. There was lots of things related to credit card, as brother said.
जैसे भाई ने बताया credit card के जैसे बहुत सारे प्रलोभन थे.
Lots of loans over me. Lots of debts was there, which I was unable to come out of it.
और बहुत सारे ऐसे मेरे कर्ज मेरे जीवन के ऊपर थे. बहुत सारे loan थे जिसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था.
I really thank for the grace of God, you know.
और मैं सच में परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ.
Because there are many people, you know, take wrong decisions. At that point of time also.
और वहाँ पर और भी लोग थे जहाँ पे उनके जीवन में उन्होंने गलत निर्णयों को तब लिया.
People take wrong decisions like ending up their life.
और वो गलत निर्णय के बाद वो अपने जीवन का अंत कर देते हैं कई लोग.
Because they are unable to face the situations which is there in front of them.
और जो उनके सामने जो परिस्थिति हालात है उनका सामना न करने के कारण वो असफल हो जाते हैं.
When I speak, tears roll down.
और जब मैं बोलता हूँ जब वो आंसू आते हैं.
Because it is really something where you know we need to work out in our spiritual life, which is very much connected to our spiritual.
और ये हमारे आत्मिक जीवन में कार्य करने के बराबर है उससे संबंधित ये है.
Because there is where you know the word very much you know purely talks as a pure milk that very much be careful in handling money.
और ये बहुत ही एक दूध के समान एक वचन परमेश्वर हमसे परमेश्वर बात करता है कि हमें बहुत ही सावधान रहना है पैसों का उपयोग के बारे में.
Because two things which the word of God you know talks to us and warns us.
दो बातें हैं जिनके बारे में परमेश्वर हमको चेतावनी देता है.
One is money and second is woman.
और एक पहला है पैसा और दूसरा है वो स्त्री.
Which are the two things which pulls us down at any moment of time.
और ये दो चीजें ऐसी हैं जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीचे खींच सकता है.
Because it is not like you know today I am perfect, tomorrow I do not know where I will be.
और ऐसा नहीं कि आज शायद मैं सिद्ध होऊंगा लेकिन कल पता नहीं मैं कहाँ होऊंगा.
Because this is where now every day the church has to speak over it over and again so that we are on our path every time.
और इसी क्षेत्र के ऊपर इसी विषय के ऊपर कलीसिया को बार बार कहते रहना है ताकि हम हमारे उस मार्ग के ऊपर हमेशा पाए जाए जहाँ हमें होना है.
Really, I thank for that holy Spirit speaking to us, you know.
और मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा का जो हमसे बातें करता है.
I would say I would take it as a prophetic message to myself.
और मैं ये एक भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी के वचन के रूप में मैं इसे लेता हूँ.
I'm working over it.
और मैं उसमें कार्य कर रहा हूँ.
And I really pray it is for every one of us. There could be some need for us where still we are lacking somewhere in managing in this particular area.
और हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं ऐसी जरूरत होंगी जहाँ पे पैसों की जरूरत है यहाँ कमी घटी हो सकती है.
And second thing what I got today was you know the time of fellowship.
और दूसरा जो वचन मैंने आज प्राप्त किया कि जो संगति का समय.
Many of the times I have neglected my fellowship at home.
और जो संगति का जो मेरा घर पे समय होता है मैंने उसको नजरअंदाज किया है.
Many time, you know, I have given very less time to my family, to my children, to my wife.
और मेरे बच्चों को मेरे परिवार को मेरी पत्नी को बहुत कम समय मैंने दिया है.
Where I really regret for that also.
मुझे बहुत ही पश्चाताप उन बात में है.
It's again a testimony, you know, how I get my family together.
और एक उदाहरण के रूप में अब एक परिवार को मैं कैसे आगे बढ़ा रहा हूं.
Because it is again another responsibility area where we all need to work together.
और ये एक दूसरा एक हिस्सा है जो क्षेत्र है जिम्मेदारी का जहां अपने आप को हमारे जीवन में कार्य करना
है. Because due to certain things we may neglect that particular fellowship at home.
और कई बार बहुत सारी चीजों के बाद जिम्मेदारियों के कारण उस जो जिम्मेदारी घर की है उसको हम नजरअंदाज करते हैं.
Where we neglect even you know reading the word of God.
और हम जो परमेश्वर का वचन है उसको भी नहीं पढ़ते हैं.
As brother said, come back to the Bible.
और जैसे भाई ने बताया कि हमें बाइबल की ओर अब वापस लौट
And you know, coming back to the Bible is something again that fellowship which I need to build together with me and my family.
और बाइबल की तरफ लौटना उसका मतलब मैं और मेरे परिवार के साथ उस संगति को बढ़ाना.
Hearing that voice of God.
परमेश्वर के उस वचन को सुनना.
And hearing that you know what God has got for me to speak every day.
और परमेश्वर जो प्रतिदिन मुझसे बात करना चाहता है उसको सुनना.
And in that area also I was sometimes not serious.
और उस क्षेत्र के अंदर भी कई बार मैं गंभीर नहीं रहा.
I really pray you know days to come that God help.
और आने वाले दिनों के अंदर मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी मदद करे.
Really you know give that that time and you know to seek as it says seek first the kingdom of God and his righteousness and all things shall be added unto you.
और सच में उस परमेश्वर को वो समय मिले हमें कि हम उसको खोज सके जैसे वचन कहता है पहले उसके राज और धर्म की खोज करो सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी.
Yes that is what you know we need to seek. Yeah, you know, with our heart and mind.
और यही एक चीज है जो हमारे पूरे मन से हृदय से हमको खोजना है.
That every day I need to be with Jesus.
कि प्रतिदिन मुझे यीशु मसीह के साथ होना
है। Every day I need to examine myself with Jesus।
और हमेशा प्रतिदिन यीशु मसीह जैसे साथ है मैं जो अपने आप को जांचना है।
A tree green and fruitful।
और ऐसा पेड़ जो बहुत ही फलदायी है और हरा भरा है।
I really earn that desire in my life and in myself।
और मैं अपने खुद के जीवन में वो इच्छा को रखना चाहता हूँ।
That I be an example to my family, to my church, to my children and to my fellow believers।
और ताकि मैं अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए अपने जो विश्वासी भाई बहनों के लिए उदाहरण बन सकूं।
Not to pretend, you know, that should not be there।
और ये दिखावे के लिए हमें नहीं होना चाहिए।
Really in my spirit I seek this life।
लेकिन सच्चाई से मेरे हृदय में इसको मैं खोजूं।
May the Lord lead us and bless us।
और प्रभु हमारी अगुवाई करे और आशीष दे।
Thank God for what I heard today।
और जो बातें सुने उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद।
Brother reading from 1 Peter chapter 2।
जैसे मैं पहला पत्रस दो अध्याय से पढ़ रहा था।
And it starts where it says therefore।
और वहाँ पे लिखा है जैसे उसकी शुरुआत दूसरे अध्याय की होती इसलिए लिखा गया।
Other version it starts so, but it's connected to the chapter 1, you know, if you go to the last part।
मतलब ये दूसरा अध्याय है जो पहले वचन के अंतिम वचन से जुड़ा हुआ है।
So you read that chapter, it's a really good chapter, chapter 1 Peter chapter 1। And it speaks about holy living।
और जैसे पहला पत्रस जब हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छा वचन है कैसे हम जीवन जी रहे हैं।
So it says in a I'm reading the Hebrew version। It says if you read verse 23।
पहला अध्याय 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं।
It says you have been born again। This life did not come from something that dies। It came from something that cannot die।
और यहाँ लिखा है कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन पाया।
You are born again through God's life-giving message that lasts forever।
और हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा जो अविनाशी है जो हमेशा बना रहता है उसके द्वारा नया जन पाया है।
This life what we have got from Christ is no, it's not something that we have gained, it's come from God, the word of God, life-saving word of God।
ये परमेश्वर का जो उद्धार हमने प्राप्त किया अपने नहीं लेकिन परमेश्वर के उद्धार देने वाले वचन के द्वारा प्राप्त किया है।
एंड लेटर इट सेज यू नो लाइक इट सेज अबाउट आइज़ाया दैट वर्स 40 इट्स मेंशनड ओवर हियर इट सेज आवर लाइव्स आर लाइक ग्रास ऑफ स्प्रिंग एंड एनी ग्लोरी वी एंजॉय लाइक इज लाइक द ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड फ्लावर।
और ये शायद 40 और 6 के अंदर भी लिखा है कि जो कुछ हमारा जीवन एक घास के समान है।
द ग्रास डाइज अप
और जो घास सूख जाती है
एंड डाइज एंड द फ्लावर फॉल्स टू द ग्राउंड
और जो फूल है उसकी शोभा चली जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है।
बट द वर्ड ऑफ लॉर्ड लास्ट फॉरएवर
लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहता है।
एंड देन सेज एंड दिस एंड दैट वर्ड इज द गुड न्यूज़ दैट वाज टोल्ड टू यू
और यही वचन जो हमारे लिए एक सुसमाचार एक भला समाचार है।
सेइंग लाइक if you read it says that it's like the grass of spring, you know, the spring time the grass is very lush green, you know, and it's nice and it's got a nice blue flower।
और यहाँ पे लिखा है कि जो जो स्प्रिंग टाइम में जो जो घास जो होता है बहुत ही हरा भरा होता है।
You know, like a healthy body is and having a nice life, you know, like but when old age comes, you know, wrinkle, it says all that glory what was there when you are young, it all falls away, the grass dries।
और जब जवान होते ताकत और सारी चीजें अच्छी होती है लेकिन जब बूढ़े होते हैं सारी वो घास के समान जो सुंदरता जो है वो नाश होने लगती है।
And if we have that word of God in our hearts, it never dies, that word of God lasts forever।
और लेकिन वो परमेश्वर का वचन जो अगर हमारे अंदर है तो कभी नहीं मरता वो सदा सर्वदा बने रहता है।
And then it goes to say, therefore, you know, says, stop all malice, stop all, you know, don't lie to anybody, don't be jealous, all these things, and then it says, be like newborn babies।
और इसलिए क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर युगानुयुग है इसके कारण बैर भाव या छल कपट या डाह निंदा हम में नहीं होगी। उसके बाद दूसरे वचन में नए जन्म के बच्चों के समान हमें दूध की लालसा करना।
Newborn babies, be like newborn babies, hungry for milk, just think about a small baby, you know, means really hungry, he'll cry out loudly that I want milk, I'm really hungry, I need that milk।
और छोटे बच्चे के समान वचन की लालसा करना। छोटा बच्चा जो है वो भूखा होता है उसको वो चाहिए होता है वो रोता है उस दूध के लिए।
And if you read the later part, it says you should want the pure teaching that feeds your spirit।
और वहाँ पे लिखा है कि उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है।
So God can go to God and ask him to give his word, to instill his life in my life, not about what I think, but what he thinks about it.
इसलिए परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर का वचन हम मांगे कि हमारे अंदर मैं जो सोचता हूँ वो नहीं लेकिन उसका उसकी सोच है उसका वचन.
See, if you read the Bible, it will see that it doesn't say like you know, it just read the word of God.
परमेश्वर का वचन ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है कि केवल वचन पढ़ो तुम, ऐसा
और
नहीं.
गेट द नॉलेज अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड.
और परमेश्वर के वचन के बारे में जो जो ज्ञान है उसको प्राप्त करो, ऐसा नहीं.
लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड.
लेकिन कहता है कि वचन के अनुसार हमको उसके
that
जीना है.
वर्ड्स शुड बी सीन इन अस.
और वो वचन हमारे अंदर दिखने चाहिए.
आई प्रे दैट गॉड विल हेल्प अस टू हैव दैट लाइफ दैट दैट वर्ड कैन लिव इन अस दैट सीड दैट इज पुट मे ग्रो.
और सच में ये हमारा जीवन ऐसा हो सके कि परमेश्वर का वचन दिख सके, वो जो दूध के समान वचन हमारे अंदर बढ़ सके.
लाइक दैट बेबी व्हेन हंग्री यू नो ही क्राइज आउट लाउडली, मदर नोज ही क्राइंग, शी नीड्स समथिंग यू नो लाइक यू हैव टू गिव हिम दैट मिल्क.
और एक छोटा बच्चा जब होता है वो जब जो भूखा होता है वो रोता है चिल्लाता है, माता को पता चल जाता है कि अभी इसको दूध का समय है.
सेम वे आई कैन गो टू गॉड एंड आई रियली प्रे टू हिम, गॉड आई सी आई डोंट हैव दैट इन माय हार्ट.
और इसी प्रकार परमेश्वर के पास जाके हम पुकार सकते हैं, प्रभु ये वचन मेरे हृदय में नहीं है.
आई वांटेड लिविंग वर्ड टू बी देयर इन माय हार्ट.
प्रभु तेरा जीवित वचन मेरे हृदय में चाहता हूं.
आई वांटेड टू बी लिविंग, नॉट जस्ट नो बी देयर बट अ लिविंग वर्ड इन माय हार्ट.
प्रभु वो वचन रहे इतना ही नहीं लेकिन एक जीवित वचन मेरे अंदर आए.
एंड सेकंड पार्ट वाज वेयर ब्रदर अबू वाज शेयरिंग अबाउट Joshua.
और यहोशू के बारे में, यहोशू पुस्तक के बारे में ब्रदर अबू बता रहे थे. जैसे
इफ यू रीड दैट, आई वाज जस्ट रीडिंग द पार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ इट आल्सो, जस्ट गोइंग ऑन. गॉड यू नो ही स्पीक्स अबाउट फर्स्ट इज द प्रॉमिस दैट इज गिवन. ही सेज यू विल गो, आई विल गिव यू दैट लैंड टिल द सन दैट इज सेटिंग, यू नो यू गो देयर दैट एवरीथिंग विल बी योर्स.
परमेश्वर वहां पे उनको वायदा देता है कि सूर्यास्त होने से पहले तुम वहां पे जाओ लड़ाई, जो कुछ वहां पे सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा.
एंड यू नो as promised to Moses,
जैसे मैंने मूसा से वायदा किया इस प्रकार.
But if you read that verse 7,
लेकिन जब आप सात वचन को पढ़ते हो,
it says after that the whole thing says only be strong and courageous and you know and do according to all the law which Moses my servant commanded you.
इतना ही हो कि तू हियाव बांध कर दृढ़ होना और जैसे मेरे मूसा ने तुझे मेरे दास ने आज्ञा दी है वैसे अनुसार करने की चौकसी करना.
And it says about meditating on the book of the law.
और वहाँ कहते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करने के बारे में.
So I was thinking about it, you know, like, yes, he says everything I'll give it to you, all these things are given to you, but do one thing, you know, just what I've told you, just listen to that, obey to that.
और मैं परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा और करूंगा, लेकिन एक चीज तुम्हें करनी है कि जो वचन मैंने दिया उसको सब आप सुनो, आज्ञा पालन करना है.
you know, just live a righteous life.
एक धर्मी जीवन को जिए.
Meditate on my word.
और मेरे वचन के ऊपर मनन कर.
you know, and I said, so, just think about a father saying to a son, you know, like, you do all these things and then I'll give you all these things, but only you have to do this.
और एक पिता अपने बच्चों को कहते हुए सोच सकते हैं कि आप मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा लेकिन तुम्हें केवल इतना करना है.
Thing can be like, you know, I can give you victory over sin, I'll have that fellowship with you always, I'll be with you always, but you know, let this be in your life.
और मैं तुम्हें पाप के ऊपर विजय दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ संगति करूंगा, लेकिन ये चीज तुम्हारे अंदर हो केवल.
एंड द सेकंड पार्ट द लास्ट पार्ट इन दैट थिंग इज वर्स 9 सेज अगेन ही रिमाइंड्स हैव आई नॉट टोल्ड यू बी करेजियस बी स्ट्रांग डू नॉट ट्रेम्बल एंड बी नॉट बी डिसमेड बिकॉज यू नो आई एम विथ यू आई एम.
और नौ वचन में कहता है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरा यहोवा तेरे संग रहूंगा.
God's promise is there, no, like he's always there with us, he'll be there with you.
परमेश्वर का वायदा हम सबों के लिए कि वो हमेशा हर जगह पर हमारे साथ है.
मेरे लिए God will bless them.
परमेश्वर में आशीष दे. परमेश्वर का धन्यवाद हो. पहला पत्रस दूसरा अध्याय जो पढ़ रहा था उसमें से जो वचन मुझे प्रोत्साहित किया और चुनौती दिया वो मैं बताना चाहता हूँ. पहला पत्रस दूसरा अध्याय और उसका चार वचन, उसके तीन वचन से पढ़ेंगे. क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है. वचन 5, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है. जब इस वचन को पढ़ रहा था तो एक चीज़ जो मेरा ध्यान केंद्रित किया वो है कि पांच वचन के शुरुआत में तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो. मतलब जब हम कलीसिया में आते हैं तो यहाँ पर हम हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार या हर एक जो खासकर व्यक्ति यहाँ पर आता है वो एक आत्मिक पत्थर के समान है. और आत्मिक पत्थर एक ईंट के समान, जैसे आज हम देखते हैं कि ईंट से घर बनाते हैं, और वहाँ लिखा है कि फिर तो हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। अगर हमको सच में एक आत्मिक कलिसिया बनना है तो उसका मतलब हमें आत्मिक ईंट या आत्मिक पत्थर बनना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसे प्राप्त करने के द्वारा। मैं सोच रहा था उसके साथ एक जिम्मेदारी भी हमारे जीवन में आती है कि अगर मुझे इस कलिसिया का हिस्सा बनना है, उसके साथ साथ मेरी एक जिम्मेदारी आत्मिक पत्थर के रूप में आती है। अगर इस दीवार को मैं देखता हूँ, अगर बांधने वाले ने अगर कोई ईंट यहाँ पर छोड़ दी होती, चार ईंट छोड़ दिए, एक ईंट छोड़ दिया, तो ये जो दीवार जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उसको अधूरा दीवार कहा जाता। वैसे ही अगर मुझे इस कलिसिया को या इस आत्मिक घर को कंप्लीट करना है, बनना है, तो मुझे मेरा जो आत्मिक पत्थर का जो कार्य है या जिम्मेदारी है, उसको अच्छी तरह से करना होगा। जहाँ मुझे बनना है, शायद हो सकता है कोई ईंट बहुत ही नीचे है जो आज मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन वो ईंट नीचे थी, इसके ऊपर दिखने वाली ईंटें आई। शायद हम हर कोई यहाँ पे शायद बजा नहीं सकता, गा नहीं सकता या बांट नहीं सकता, लेकिन हर एक व्यक्ति एक आत्मिक पत्थर है। कहीं ना कहीं उसका स्थान मसीह की कलीसिया में है, शायद वो दिख नहीं पा रहा है, लेकिन अगर मैं उसको नज़रअंदाज करके मैं अपना जिम्मेदारी, अपना आत्मिक पत्थर बनने का कार्य नहीं करता हूँ, तो मेरे ऊपर जो बनने वाली दीवार है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो वो एक जिम्मेदारी हम सभी, या मैं अपने आप के लिए लेना चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी आत्मिक पत्थर के रूप में, एक आत्मिक ईंट के रूप में यहाँ पर क्या है, उसको मुझे जानना है। अगर मुझे आज नहीं पता है तो मुझे परमेश्वर से पूछना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु इस आत्मिक भवन को बनाने के लिए, इस कलिसिया के अंदर, इस देह के अंदर, मेरे आत्मिक रूप के अंदर क्या मेरा योगदान होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किस रीति से प्रभु मैं खड़ा रहूँ। दूसरी चीज़, 10 वचन में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। और ये वचन जिसे लिखता है पत्रस में लिखा हुआ है, ये एक नम्रता से वो कहता है कि पहले तुम कुछ भी नहीं थे। जैसे वचन कहता है कि कहाँ से हम गिरे थे, उसको याद करके हमें यहाँ पर याद करना है कि अब हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर की दया से है। कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक रूप में, हमें परमेश्वर की दया को हरदम याद करना है। अंत में वचन 16, अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन एक चुनौती, एक चेतावनी दे रहा है कि अब इस स्वतंत्रता को पाप के लिए आड़ न बनाओ। परमेश्वर ने जो आज़ादी हमें दी है, एक बार जब मैं एक पढ़ रहा था वो स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें लिखा कि परमेश्वर ने बहुत कम दिन लगे इसराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए, लेकिन मिस्र के जब इसराइली लोगों में से मिस्र निकालने के लिए 40 साल लगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि चमत्कार करके उनको मिस्र से बाहर निकालने के लिए आई थिंक 10 दिन 15 दिन, पता नहीं कितने दिन, कुछ दिनों में परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। लेकिन जब वो इसराइली बाहर निकले, उनके अंदर मिस्र छिपा हुआ था, उस मिस्र को बाहर निकालने के लिए परमेश्वर को 40 साल लग गए। और वो मुझे भी चुनौती देता है कि प्रभु मैं उद्धार तो पा लिया, मैं बहुत जल्दी मैंने प्रार्थना कर ली, मैं उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गया, लेकिन आज भी वो मिस्र जो है, जो स्वभाव पाप का, यह बहुत सारी चीज़ें, वो स्वतंत्रता लेकर पाप करना, वो मेरे जीवन से नहीं निकल रहा है। और उसमें कई बार परमेश्वर को 40 साल लग जाते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि वो 40 साल का सफर 12 या 13 दिन का था, लेकिन आज मैं उसको 40 साल का सालों तक लगा रहा हूँ, परमेश्वर राह देख रहा है कि उस स्वतंत्रता का, जो 16 वचन में लिखा है कि स्वतंत्रता को पाप करने के लिए मैं आड़ न बनाओ। आमीन।
प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सही में आज का दिन बहुत अच्छा है और परमेश्वर की उपस्थिति है। और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह हमारे बीच में। मैं पहला पत्रस उसका 2:24 से मुझे ये हमेशा मुझे प्रोत्साहन मिलता है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा है, हमने नहीं बोला। लेकिन जैसा पहला पत्रस पहला अध्याय में जो पहला वचन है कि परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार हमें चुन लिया है, हम जानते भी नहीं थे, हमें कुछ याद भी नहीं, क्या हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम जीरो हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारी उत्पत्ति से पहले ही हमको चुन के रखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया ताकि हम पाप में मर करके एक नित्यमत्व का जीवन जिए। एक बहुत बड़ा बलिदान है हमारे जीवन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और हमें विश्वास से और गहराई से इस बात को सोचना है। प्रभु का वचन कहता है लूका 11:28 में, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और उन्हें मानते हैं। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे याद भी है, हमेशा हमें देखा होगा मैं ये वचन को बोलता हूँ, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और उन्हें मानते हैं। तो आज यहाँ पर बैठे हुए ये परमेश्वर का एक पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान की योजना है जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन दो बच्चों ने जो बपतिस्मा के लिए एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा मुझे इन दोनों बच्चों को देख करके कि इन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। मुझे भी अपना बपतिस्मा याद आता है फिर, क्योंकि ये नया जीवन है जो हमें मजाक में नहीं लेना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम पुराने करार में जाते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है बपतिस्मा का। हम यूं ही इसे आज्ञा वो नहीं करना है, ये सच में परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, ये पतरस की आज्ञा है, प्रेरितों की आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना है। और ये एक आज्ञा का पालन करना है। बपतिस्मा लेने से ऐसा नहीं है कि हमारा हम पूरी तरह से हमारा जीवन बदल गया, हम पूरा ऐसा नहीं, ये एक स्टेप है बपतिस्मा लेना। और हर एक को, जिन भाई बहनों ने जो जवान हैं, मैं उनके लिए एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि ये आज्ञा है जो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि जो कोई मेरी आज्ञा मानता है और उन पर चलता है और जो मेरे साथ है वो बटोरता है और जो नहीं बटोरता वो विरोध में है, मेरे विरोध में है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, लूका 11 की पुस्तक जो अपना है 28 के ऊपर है, 25 में लिखा है कि जो मेरे साथ है वो बटोरता है और जो नहीं बटोरता है वो मेरे विरोध में है। तो आज हमें ये जो बपतिस्मा है ये पूरे हृदय से हमें लेना है। और मैं उन नौजवानों के लिए प्रोत्साहन देता हूँ कि सही में ये आज्ञाओं का पालन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक सीखा था पहले, मुझे याद है कि जब हमने बपतिस्मा नहीं लिया, शुरू में हम नए ऐसे ही बैठे हुए थे कलेशिया में, तो एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे भाई, तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि ऐसी सभा चल रही थी, वहाँ एक लड़की थी और बपतिस्मा का लेसन पाठ चालू था कि हमें नए सिरे से जन्म लेना है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और जो बपतिस्मा लेगा, जो आज डिसीजन लेगा, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। तो लेकिन जो लड़की बैठी थी, नौजवान लड़की थी, उसका ध्यान वहाँ जो प्रचारक का उसके ऊपर नहीं था, वचन पर ध्यान नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था, जिसने किसी और को टाइम दिया था कि ये टाइम मुझे वहाँ पर थिएटर में जाना है और पिक्चर देखना है, उसका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पर जो पासवान थे उन्होंने बोला कि जिस जिसको आज डिसीजन लेना है वो लिख के मुझे दो, और ताकि मैं अगले टाइम में बपतिस्मा का कुछ टाइम टेबल बनाऊँ। तो लड़की ने और सब लोगों ने जिन जिन को मतलब बपतिस्मा लेने का जो डिसीजन था, जो निर्णय था, जो परमेश्वर ने जो दिया था कि ये पहला कदम है हमें बपतिस्मा लेना है, तो सब ने लिख लिख के दिया। पहले कागज़ों पे कुछ लोग मांगते थे लिख कर कि जिनको चाहिए वो लिख के दे दो, उनके लिए प्रार्थना की जाएगी, उनके लिए क्लास लिया जाएगा, सिखाएंगे। तो उस लड़की ने लिख के नहीं दिया, थोड़ी देर में उसने घड़ी देखा और वहाँ से वो चली गई। बाद में मालूम गिरा कि उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया और बहुत जल्दी में थी, क्योंकि उसका टाइम हो गया था वहाँ से बहुत जल्दी, और एक्सीडेंट में थी और लड़की वो ऑफ हो गई। और उसके बाइबल में लिखा हुआ था, ऊपर ही उसने लिखा था, एक कागज़ पे लिखा नहीं, बाइबल पे लिख दिया कि आज नहीं कल बपतिस्मा लूँगी। उस बच्ची का बपतिस्मा का दिन आया नहीं, कल और चला गया, परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन नहीं किया। तो हम सोच सकते हैं कि उसका जीवन कहाँ गया होगा, वो कहाँ गई होगी वो। तो जो समय है, जो समय का है, उसे हमें डिसीजन पूरे हृदय से हमें लेना है और इस बात पर हमें गौर करना है। ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, जो उसके प्रेरितों ने आज्ञा दी है, उस पर हमें गौर करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन दिनों को जो मैं याद किया, आज बपतिस्मा का टाइम इन बच्चों के जीवन में लाया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बच्चों को आशीष करें। थैंक यू।